हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 5 कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म श्लोक क्रमांक 21। बाह्य स्पर्श स्वसक्तात्मा विंद्यात्मनि यत् सुखम सब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम् अश्नुते। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परब्रह्म से में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो आध्यात्मिक रूप से प्रगतिशील भक्त है वो किस प्रकार से अनंत सुख की प्राप्ति करते हैं और कैसे करते हैं। बाह्य सुख के प्रति अनासक्त होकर के ही व्यक्ति आंतरिक आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति कर सकता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक वास्तविकता से आध्यात्मिक सत्यता से जुड़ा है वो योग के द्वारा होता है। इसमें लिखा है योग युक्त आत्मा, योग अभ्यास के द्वारा वो अनंत आनंद की प्राप्ति करता है। और यहाँ पे अक्षय शब्द जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस जगत में कोई भी सुख व्यक्ति अनुभव करता है उसका क्षय होने लगता है। जैसे कोई व्यक्ति कुछ खाद्य पदार्थ सुस्वादु खाद्य पदार्थ को खाता है तो कुछ समय के बाद या हर कौर के संग उसका स्वाद जो है वो कम होता जाता है। तो यहाँ का जो सुख है वो क्षय होने वाला सुख है, लेकिन जो आध्यात्मिक जगत का सुख है वो अक्षय सुख है जिसके बारे में भगवान यहाँ बता रहे हैं। जैसे जैसे व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करता है तो शरीर की शक्ति भोग करने की या इंद्रियों की शक्ति भोग करने की कम होती जाती है और अंततो गत्वा लोग इंद्रिय तृप्ति को रोक देते हैं। इसलिए नहीं कि वो संतुष्ट हो जाते हैं अपितु तो इसलिए क्योंकि शरीर की शक्ति जो है वो कम हो गई है। तो ये देख सकते हैं कि व्यक्ति के पास अगर भोग की सामग्री हो भी, जैसे मान लीजिए कोई कहे कि आप जितना चाहें उतनी खीर खा सकते हैं, तो हम कितना खा सकते हैं क्योंकि हमारी खाने की जो क्षमता है वो सीमित है। लेकिन आध्यात्मिक सुख जो है वो प्रतिक्षण बढ़ता जाता है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन चैतन्य महाप्रभु इसको समझाते हैं आनंदम बुद्धिवर्धनम, आनंद के सागर, आनंद का सागर तो है ही आध्यात्मिक जगत में और साथ ही साथ वो बढ़ता चला जाता है। और ये सब हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा संभव है। इसीलिए जो शुद्ध भक्त हैं वो 3-3 लाख नाम 24 घंटे नाम करते रहते हैं, क्योंकि उनको नाम में इतना आनंद मिलता है। तो हमको अगर नहीं मिल रहा है तो समझ में आना चाहिए कि हमारी स्थिति बहुत रुग्ण है और हमको भी बहुत प्रयास करना है, अपनी चेतना को काफी ठीक करना है। तो हम इस प्रकार का अक्षय सुख कैसे भोग सकते हैं, कोई व्यक्ति प्रश्न करेगा। तो पहला चीज है कि हमको बाह्य भोगों से अनासक्त होना होगा और ये बात पे ध्यान रखना होगा कि जैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और पीछे बढ़ सकते हैं, ये एक साथ नहीं हो सकता। हम आगे भी जाएं और पीछे भी जाएं, हम दाएं भी जाएं और बाएं भी जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। उसी तरह हमारी चेतना अंदर भी जाए और बाहर भी जाए, बाह्य भी हो आंतरिक भी हो, ऐसा नहीं होता। इसलिए यदि हमको आंतरिक सुख चाहिए तो हमें अपनी चेतना को अंतर्मुखी करना पड़ेगा और इसके लिए हमको उन कार्यों की आसक्ति को त्यागना होगा जिससे हमारी चेतना बहिर्मुखी हो जाए। यानी भोग के कार्यों को करने से हमारी चेतना बहिर्मुख हो जाती है या हम शारीरिक स्तर पर आ जाते हैं, तो ऐसे कार्यों की आसक्ति को हमें त्यागना होगा भले ही वो कार्य हमको अच्छे लगते हों। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने बोला कि 16 माला का जप करो और 4 नियमों का पालन करो। तो 4 नियमों के पालन से व्यक्ति बहिर्मुख होने से बचता है और वो कार्य जो चेतना को सबसे अधिक बाहर बहिर्मुख करते हैं वो हैं जिसमें हम भोग की आकांक्षा करते हैं। तो जब एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है, योग युक्त होता है, तो वो अपनी इस आकांक्षा को, भोग की आकांक्षा को त्याग करके भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करता है। और होता क्या है, बाह्य स्पर्शिष्व सक्त आत्मा, ऐसा व्यक्ति बाह्य सुखों के प्रति अनासक्त हो जाता है। तो इसका अर्थ भी क्या है, हम आंतरिक सुख का भोग करना, इसका अर्थ ये है क्या, इसका अर्थ ये है कि हम अपने अपने छाती को फाड़ कर देखें कि इसमें क्या सुख मिल रहा है। नहीं, इसका अर्थ ये है कि व्यक्ति अपने संबंध का अनुभव करता है भगवान से, और संबंध का अनुभूति, संबंध में जो प्रेम होता है, उस प्रेम के कारण जो भक्ति की सभी क्रियाएं हैं वो व्यक्ति को असीमित सुख प्राप्त देती हैं। तो किस प्रकार से हम आंतरिक सुख देखते हैं इस पर विचार करेंगे। देखिए भक्ति योग में, भक्ति योग है उसमें वस्तुएं बाह्य हो सकती हैं हमसे, जैसे भगवान का विग्रह है, श्रीमद् भागवतम है, भगवद गीता है, भगवान का नाम है, ये सब हमारे बाहर दिखाई पड़ता है, लेकिन इनका इनका संपर्क में आने से व्यक्ति की चेतना अंतर्मुखी होती है। तो ये बहुत ही हमारे लिए बहुत बड़ी सुविधा है कि हम लोग जो हमारी बाह्य वृत्ति है उसको त्यागना नहीं है, लेकिन बाह्य वृत्ति में भगवान को बिठाना है। अगर देखना चाहते हैं तो भगवान के सुंदर रूप को देखें, स्मरण करना चाहते हैं तो भगवान का स्मरण करें, कुछ सुनना चाहते हैं तो भगवान के बारे में सुने, खाना चाहते हैं तो भगवान को प्रसाद भोग लगा के खाएं, कुछ बोलना चाहते हैं भगवान का नाम उच्चारण करें या भगवान के बारे में कुछ बोलें, तो व्यक्ति इन्हीं कार्यों से हृदय में अनंत आनंद की अनुभूति करेगा, लेकिन समय आने पर। भले ही समय आपको अनंत आनंद की प्राप्ति ना हो या हमको भी प्राप्त ना हो, लेकिन विश्वास करते रहना चाहिए। भगवान ने इसे पहले बताया था कि जब हम तत्परता से लगे रहेंगे, इंद्रियों को संयमित करते रहेंगे, तो हमको इस ज्ञान की सुख की प्राप्ति होगी। तो उसका सुख की प्राप्ति ना होने का एकमात्र कारण है कि प्रेम का भाव है। तो जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति करता है तो उसके 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 हृदय में भगवान के प्रति प्रेम भी बढ़ता जाता है, और फिर उसके कारण वो उन्हीं भक्ति की क्रियाओं में अनंत आनंद की प्राप्ति करता है। तो आंतरिक आनंद का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति चुपचाप बैठे और कुछ ना करे। जैसे उदाहरण मैं दे सकता हूं, जो लोग भगवान का नाम जप करते हैं, कालांतर में जब हृदय शुद्ध होने लगता है और जितनी मात्रा हम ध्यान पूर्वक करते हैं, तो कभी कभी भगवान की कृपा से एक बहुत सुंदर सुख हमको मिलता है हरे कृष्ण मंत्र में, और भले ही क्रिया बाह्य रूप से हो रही हो, लेकिन उस सुख की अनुभूति हम अपनी चेतना के द्वारा करते हैं। तो यही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि अक्षय सुख व्यक्ति को मिलेगा, चाहे क्रियाएं भी बाह्य रूप से होती रहें, लेकिन उनका जो सुख है वो आंतरिक रूप से चेतना के द्वारा हम अनुभव करते हैं। तात्पर्य को देखेंगे। कृष्ण भावनामृत के महान भक्त श्री यामुनाचार्य ने कहा है, यदवधि मम चेतः कृष्ण पादारविंदे नवनवरस धामन्युद्यतम रन्तुमासीत् तदवधि बत नारी संगमे स्मर्यमाने भवति मुख विकारः सुष्टु निष्टीवनम च। जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगकर उनमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूं, तब से जब भी काम सुख के बारे में सोचता हूं तो उस विचार पर ही थूकता हूं और मेरे होठ अरुचि में सिमट जाते हैं। तो ये दिखाता है कि जो व्यक्ति इसकी चेतना शुद्ध हो गई है, उस स्वभावतः भौतिक भोगों के प्रति अरुचि उत्पन्न कर लेता है। तो ये एक शुद्ध अवस्था है कृष्ण भावना की, और ये कैसे होती है, भगवान की प्रेमा भक्ति में लगकर, भगवान को प्रसन्न करने के उद्देश्य से हम भक्ति करते हैं, उसका अभ्यास करते रहते हैं, तो फिर अपने आप ही भोगों के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। जैसा कि यहाँ बता रहे हैं, यामुनाचार्य एक बहुत बड़े आचार्य हुए थे श्री संप्रदाय में, और वो आचार्य बनने से पहले वो राजा थे, और राजा के कारण होने के कारण उन्हें कई रानियां थी और उनका संग उन्होंने किया था, लेकिन जब वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लग गए और भक्ति का सुख उनको प्राप्त होने लग गया, जैसे यहाँ बता रहे हैं, तो जब भी वो काम सुख के बारे में सोचते थे या उनके विचार आ जाता था तो उनका मन जो है वो वितृष्णा से भर जाता था। ये एक और बात महत्वपूर्ण है कि हम भक्ति कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि पूर्वगत संस्कार हमारे हृदय में उमड़ेंगे नहीं, हो सकता है उमड़ जाए, लेकिन जो श्रेष्ठतर भक्त होते हैं या प्रगतिशील भक्त हैं उनमें आसक्त नहीं होते, उनको रिजेक्ट कर देते हैं, कह रहे ये तो मेरे पूर्वगत के कर्मों के अनुसार संस्कार तो है लेकिन उसमें वो आसक्त नहीं होते। तो यहां हम देख सकते हैं कि महान भक्त के हृदय में भी पुराने बातों के विचार आ सकते हैं, लेकिन उसको वो अच्छा नहीं मानते हैं, सुंदर नहीं मानते हैं। ब्रह्मयोगी अथवा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान की प्रेम भक्ति में इतना अधिक लीन रहता है कि इंद्रिय सुख में उसकी तनिक भी रुचि नहीं रह जाती। भौतिकता की दृष्टि में काम सुख ही सर्वोपरि आनंद है, सारा संसार उसी के वशीभूत है, और भौतिकतावादी लोग तो इस प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य ही नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट बात है, प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं कि देखिए जो लोग परिवार करते हैं तो परिवार को चलाने के लिए ही व्यक्ति इतनी अधिक मेहनत करता है, अगर अकेले व्यक्ति रहे तो उतना मेहनत नहीं करेगा, ये तो संसार में हर व्यक्ति जानता ही है। तो परिवार करने का उद्देश्य क्या होता है? परिवार करने का उद्देश्य आप जान सकते हैं, काम सुख का भोग करने के लिए व्यक्ति परिवार करता है या उसकी वजह से परिवार हो जाता है, और फिर व्यक्ति पूरा जीवन उसी में उसके भरण पोषण में और सब कार्य करने में मेहनत करते हुए पूरा जीवन बिता देता है। तो ये इस जगत का केंद्र है। हर व्यक्ति जिसके पास भी भौतिक शरीर है उस काम इच्छा से पीड़ित है, ये परेशान है, उसके वशीभूत है। लेकिन जब व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने लगता है तो अपने आप ही इन इच्छाओं को वो त्याग देता है, क्योंकि उसे उच्चतर सुख मिल जाता है कृष्ण की सेवा करने का, श्रवण करने का, कीर्तन करने का। तो ये जो सारी चीजें हैं वो महसूस करता है कि इसके द्वारा उसकी चेतना शरीर में बद्ध हो जाती है, वो शरीर में आसक्त हो जाता है, तो अपने आप ही ऐसी क्रियाओं के प्रति उसकी आसक्ति छूट जाती है। और वो ये भी देखता है कि कैसे भगवान की भक्ति करने से उसकी चेतना शरीर से ऊपर उठ जाती है, तो इसलिए ऐसी क्रियाओं के प्रति उसकी आसक्ति बढ़ जाती है, भक्ति की क्रियाओं के प्रति वो अपने अनुभव से ऐसा करता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्साह पूर्वक अपना कार्य करता रहता है, यही आत्म साक्षात्कार की कसौटी है। आत्म साक्षात्कार तथा काम सुख कभी साथ साथ नहीं चलते। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जीवन मुक्त होने के कारण किसी प्रकार के इंद्रिय सुख द्वारा आकर्षित नहीं होता। तो इसकी चर्चा हमने करी थी पिछले श्लोक में कि ये जगत जो है वो अशाश्वत है, और यहाँ के मिलने वाले जो भोग हैं वो भी अशाश्वत हैं, और जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो समझता है कि वो शाश्वत है, तो ऐसे सुखों के प्रति वो आसक्त नहीं होता। लेकिन एक और बात है कि ये बात केवल ज्ञान के आधार पर नहीं होती। कृष्ण भावना में व्यक्ति केवल ज्ञान के द्वारा ही इंद्रिय तृप्ति के सुख को नकारता हो ऐसा नहीं है, अपितु उसको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने में पॉजिटिव आनंद मिलता है। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण समझिए कि जब व्यक्ति सुस्वादु प्रसाद पा रहा है भगवान का, उसका पेट भर गया, उसके बाद उसे कुछ भी बोला जाए कि आपको भोग पदार्थ खाने हैं, ये खाना वो खाना है, तो एक बात तो है उसके मन में ज्ञान भी है कि मुझे भगवान के प्रसाद के अलावा कुछ ग्रहण नहीं करना, और साथ साथ उसका पेट उसका हृदय सब भरा हुआ है भगवान का प्रसाद पा करके। अब वो भौतिक भोग आने के बावजूद भी उनके प्रति आकृष्ट नहीं होगा। तो उसी प्रकार से हम साधकों की स्थिति इस प्रकार की है कि हमें ज्ञान तो है लेकिन फिर भी भक्ति का अभी पूर्ण रस प्राप्त नहीं हुआ है। तो हमें अपनी स्थिति को समझते हुए ये समझ में आना चाहिए कि हमारी स्थिति अभी थोड़ी मतलब डावाडोल वाली है। हो सकता है कि हम ज्ञान के स्तर पर सोचें कि हाँ भौतिक भोगों को प्राप्त करके मैं सुखी नहीं होऊंगा, लेकिन फिर भी अगर भोग प्राप्त हों तो फिर मैं उनकी तरफ आकृष्ट हो जाऊं। तो इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम लोग इस भोग के वातावरण से दूर रहें और भक्ति करने का प्रयास करते रहें। फिर भक्ति से ही जब सुख अधिक मिलने लग जाएगा तो फिर हम अपने आप ही इन भोगों से निवृत्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस ऐसे व्यक्ति की बात बताई जा रही है जो इन भोगों के आसक्ति से पूरी तरह से निवृत्त है। और हमारे लिए क्या सीखना है श्लोक में कि हमको अब बाहरी भोगों से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए, ये समझते हुए कि हमारी चेतना को नीचे खींचेंगे। और इस प्रकार से अगर हम भक्ति करते रहे और हमारी चेतना शुद्ध होती रही तो एक दिन हम भी अक्षय सुख की प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा।